राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज द्वारा 29 नवंबर 1992 को सायं लगभग 6 बजे दिल्ली में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण 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 नारायण।
भगवद्गीता एक सार्वभौम ग्रंथ है। ये हिंदू संस्कृति में प्रकट हुआ है, परंतु ये सीमित नहीं है। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई क्या न हो, मनुष्य मात्र के लिए महान तत्व की प्राप्ति का एक विलक्षण साधन है। इसमें बहुत सी विलक्षणताएं भरी हुई है। अब आज कहते हैं गीता में जीवन, तो जीवन शब्द का अर्थ देखा जाए तो जीना, हम जो जी रहे हैं। यद्यपि जीवन शब्द व्याकरण से जीव प्राण धारणे धातु से बनता है, पर जीवन कहते हैं सदा कायम रहने को, सदा ही बना रहे, वो कभी भी नष्ट न हो, उसका लक्ष्य करके ये आज बात रखी गई है। तो उस जीवन की प्राप्ति के लिए गीता बहुत विलक्षण ग्रंथ है। मैं तो कहा करता हूं कि व्यवहार में परमात्मा की कला सिखाने वाला ग्रंथ है ये। रहते हम व्यवहार में हैं और करते हैं व्यवहार जगत का, परंतु उस जगत के व्यवहार में ही परमात्मा कला सिखा देना, परमात्मा तत्व को बता देना, यह गीता का लक्ष्य है। शास्त्रों में परमात्मा तत्व को चाहो तो मैं इस संसार का त्याग करूं, और संसार में रहना चाहो तो परमात्मा तत्व से विमुख हो जाओ। ऐसी बातें बहुत जगह आती है, परंतु भगवद गीता ने एक बहुत विलक्षण बात बताई है कि इस संसार में किसी आश्रम में, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, गृहस्थ आश्रम हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, संन्यास आश्रम हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, अंचज हो, हरिजन हो, कोई क्या हो, सबके लिए सामान्य रूप से उस तत्व की प्राप्ति का उपाय बताया गया है। थोड़ा सा आप ध्यान दें, संसार में घोर कर्म क्या होता है, जो बड़ा भयानक भयंकर कर्म है, वो है लड़ाई। दिन भर मनुष्यों के गला काटना, मस्तक काटना, दिन भर काम यही। ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिनों में 18 अक्रूर ही सेना नष्ट हो गई। उसके आरंभ में यह गीता कही गई। भीष्म पर्व आता है, भीष्म जी महाराज पहले लड़ाई करते हैं, लड़ाई आरंभ भीष्म पर्व में होती है। उस भीष्म पर्व में यह भगवद गीता पर्व आता है। भीष्म पर्व के 13वें अध्याय में संजय हस्तिनापुर से आकर वह लड़ाई में लड़ाई से आकर धृतराष्ट्र के सामने भीष्म जी के गिरने की बात कह देते हैं। तो भीष्म जी ने 10 दिन युद्ध किया था, तो 10 दिन युद्ध होने के बाद आरंभ से बात कही तो भीष्म जी गिरने की बात कह दी। फिर हिंदुस्तान क्या है, भारतवर्ष क्या है, इसका विवेचन किया। पहाड़ है, नदियां है, स्थान है, इसका वर्णन किया। इसके बाद अर्जुन ने देवी की उपासना की, उसका वर्णन हुआ। ऐसे सब बातें करने करते करते धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि वो युद्ध कैसे हुआ। यहां से गीता शुरू होती है। यह भीष्म पर्व का 25वां अध्याय होता है, जो भगवद गीता का पहला अध्याय है। 42वें अध्याय तक चलता है। 43वां अध्याय आपस में विचार करने का रह करके युधिष्ठिर महाराज भीष्म जी से आज्ञा मांगने के लिए गए हैं युद्ध की, और वो आज्ञा मांग आए हैं पीछे। दूसरे अध्याय में आगाड़ी 44वें अध्याय फिर युद्ध शुरू होता है। तो 25वां अध्याय एक कहा जिसमें कहा धृतराष्ट्र उवाच ये लिखा है। तो धृतराष्ट्र उवाच ये कौन कहता है, ये वैशंपायन ऋषि के वचन है। गीता में संवाद अर्जुन और कृष्ण भगवान का है, उस संवाद को कहने के लिए संवाद है धृतराष्ट्र और संजय का। और धृतराष्ट्र और संजय का संवाद कहने वाले हैं वैशंपायन ऋषि और जन्मेजय। जन्मेजय के एक बड़े पाप बन जाने से 18 प्रकार की कोढ़ निकली। उस कोढ़ को दूर करने के लिए महाभारत सुना, 18 ही पर्व, तो वो सब कोढ़ दूर होगी। 2 शंकाएं रही, उनसे 2 कोढ़ उसकी रही थी, ऐसा वर्णन आता। तो ये वैशंपायन और जन्मेजय का संवाद है। उसमें धृतराष्ट्र उवाच ये जन्मेजय के प्रति वैशंपायन ऋषि का वचन है। तो धृतराष्ट्र क्या बोले कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवास्ते किम गुरु संजय। कहते संजय इस धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और धृतराष्ट्र के पुत्र, उन्होंने क्या किया जो कि युद्ध की इच्छा वाले थे। तो ये प्रश्न ऐसा नहीं है कि उसको कुछ पता न हो धृतराष्ट्र को और पूछता हो। तो ये किन शब्द क्या किया, ये अर्थ इसका मानो कई तरह टीकाकार कहते हैं क्या किया, ये ठीक नहीं किया। आक्षेप में किम को मानते हैं, कई प्रश्न में मानते हैं कि वो क्या हुआ भैया वो। तीसरा इसका प्रकार वचन और प्रकार में अर्थ में होता है। तो प्रकार पूछते हैं धृतराष्ट्र को, ये मालूम है 10 दिन का युद्ध हो गया है, भीष्म जी गिरा दिए गए हैं, सरसैया पर सो गए हैं। यहां तक बात कह दी है बहुत संक्षेप से, बड़ी व्याकुलता आई धृतराष्ट्र के। तो वो क्रम से सुनना चाहते हैं, प्रकार सुनना चाहते हैं, किस प्रकार से युद्ध हुआ उसका विस्तार से सुनना चाहते हैं। इनका ये तात्पर्य है। अज्ञात प्रश्न हो जो जानते नहीं और जानने के लिए ऐसी बात नहीं है। उन्होंने क्या किया, मानो किस प्रकार से युद्ध हुआ वो बताओ। तो युद्ध से पहले गीता का उपदेश हुआ है, उपदेश के बाद वो बताया आपको 43वें अध्याय में महाराज युधिष्ठिर पैदल कौरवों की सेना में गए हैं। तो युधिष्ठिर के पीछे भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कृष्ण, ये पांचों साथ में से छहों ही गए हैं। तो लोगों को संदेह हुआ वो जो कौरव सेना थी उस सेना में तो ऐसा असर पड़ा कि अब युद्ध के मौके युधिष्ठिर दुर्योधन के शरण जा रहे हैं, क्षमा करो मैं तुम्हारे शरण हूं। बड़ी बड़ा कोलाहल मचा। पांडवों ने भी देखा क्या बात है, पर बोले नहीं। कृष्ण भगवान से देख कर बोले तो भगवान क्या ठीक जा रहे, उचित है। हरे को मालूम नहीं हुआ क्यों जा रहे। उसे जाकर पहले पहल जो कौरव सेनापति महाराज भीष्म जी है उनके चरणों में नमस्कार किया। तो उन्होंने जयम जयम अवाप्नुहि, बेटा तेरी जय हो, ऐसा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद पूछा युधिष्ठिर महाराज ने कि महाराज जिसके विपक्ष में आप खड़े हो हमारी विजय कैसे होगी। तो इसे अनुमोदन किया, ठीक कहता है, मैं शस्त्र वस्त्र लेकर के अपनी शक्ति से भिड़ जाता हूँ तो देवता, दानव, मनुष्य, राक्षस, असुर कोई भी मेरे पर विजय कर नहीं सकता, बात ऐसी है। तो महाराज मेरी विजय कैसे होगी मैं आपसे पूछता हूँ और एक मैं बात चाहता हूँ, बोलो। तो युधिष्ठिर बड़े संकोच में पड़े कि नहीं तुम संकोच मत करो, पूछो। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि राजा जी आप कैसे मरोगे ये बात बताओ, क्योंकि आपके मरे बिना विजय हमारी होगी नहीं। तो कहा अभी मेरा मरने का विचार नहीं है, ये इच्छा मृत्यु से, पिता के वरदान से जब चाहे तब मरे, तो अभी विचार नहीं है। तेरा वरदान मेरे में छाती रूप से रहा, फिर तुम पूछना मैं तुम्हारे को बताऊंगा। उस अर्थस्य पुरुष उदासस्थ होने कष्ट इसी सत्य महाराज बद्धोस मेर से न कौर वही। ये श्लोक भीष्म ने कहा, ये द्रोणाचार्य ने कहा, ये कृपाचार्य ने और शरीर ने कहा। मानो मनुष्य धन का दास है, धन मनुष्य धन किसी का दास नहीं है, ये सत्य है। मैं इधर रहा कौरव सेना में तो मेरे को युद्ध भी इसलिए करना पड़ेगा। इसमें एक बड़ी महत्ता की बात है, भीष्मचार्य को धन की इच्छा नहीं थी, परंतु वृत्ति भोगी रहे इधर रहे तो युद्ध के मौके यहाँ से अटलना उचित नहीं समझा, ऐसे युद्ध करते हैं। फिर वह आगे सबकी आज्ञा लेकर के इनकी आज्ञा ले ली, हुक्म ले लिया, फिर आए अपने में, फिर युद्ध हुआ। उस समय में महाराज विश्व ने कह दिया कि कौरव सेना वाला ये सब जितने हैं ये सब नष्ट होंगे, इनमें से कोई हमारे साथ आना चाहे, जीना चाहे तो आ जाए। तब युधिष्ठिर नाम करके एक दुर्योधन का छोटा भाई था, एक स्त्री से पैदा हुआ वो डंके की चोट पर गजा नगाड़ा बजा करके युधिष्ठिर महाराज के स्तर में आ गए, मैं आता हूँ इधर। सब विजय होने पर युधिष्ठिर ने कहा ये तुम्हारी सब संपत्ति है, बड़े हीरे पन्नों के गहने वाले राजा लोग मरे थे, ये सब संपत्ति तुम्हारी, तुम ले जाओ, तुम्हारे हो तुम्हारे। कैसे इतिहास की बात है, अब गीता में है भगवान ने क्या कहा वो बात थोड़ी सी कह देता हूं। युद्ध में के युद्ध के मौके गीता पर टीकाकार बहुत हुए हैं, बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी है। मैं समझता हूं संसार में किसी ग्रंथ पर इतनी टीकाएं नहीं हुई। बाइबल के प्रचार में लोगों ने धन लगाया, बुद्धि लगाई, उद्योग किया, तो इसके अनुवाद कई हो गए पर टीका नहीं हुई। टीका जितनी इसकी हुई है गीता की, इतनी किसी ग्रंथ की मेरे देखने में नहीं आई। आप लोग समझदार हैं, कोई आपने देखा हो तो मेरे को बता देना, अभी नहीं पीछे बता देना, जिससे मैं वैसा कहना शुरू कर दूंगा। मेरे जान में इतनी टीकाएं किसी ग्रंथ पर नहीं हुई। विलक्षण विलक्षण भाव निकाले, विचित्र विचित्र अस्त निकाले और टीका हुई नहीं, होती चली जा रही है, अब भी टीका होती है करके। तो ऐसा गहरा ग्रंथ है गीता, बड़ा गहरा विषय है। लोकल दृष्टि से देखा जाए तो कर्म जितने होते हैं उन कर्मों में घोर कर्म मैंने पहले कहा युद्ध है, जिसमें गला काटना पड़े, उस युद्ध रूपी क्रिया में मुक्ति का उपाय बता देना, ये बहुत विलक्षण बात है, अलौकिक बात है। एकांत में जाकर ध्यान करो, साधु बन के रहो, निवृत्ति में रहो, तब कल्याण होगा। ये प्रवृत्ति में घोर प्रवृत्ति, हिंसा मात्र में मनु नाश नाश करना, ऐसे में ऐसे समय में उपदेश दिया है, ये एक विलक्षण बात है। अर्जुन ने देखा तो भगवान से, भगवान ने कहा कि देख लो, पहले तो अर्जुन ने कहा कि दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा करो, भगवान ने वैसे ही खड़ा किया। खड़ा करके बोलेगे समवेतान एतान कुरुन पश्चिन कौरु समूह, देखो ऐसे कहा तो वो देखते ही अर्जुन पर असर पड़ा। फिर भाई अपने अपने संबंधी है, उधर कौरव सेना में देखे तो हमारे संबंधी, इधर पांडव सेना में देखे तो हमारे संबंधी, सबके सब हमारा ही कुटुंब है, ये मर जाएगा। तो अर्जुन ने युद्ध से इनकार कर दिया कि महाराज इस युद्ध में नहीं करूंगा, मैं नहीं चाहता। सुराना भी विचाराधिपत्य देवताओं का आधिपत्य मिले तो युद्ध नहीं करना चाहता, इनको मार करके भोग मिलेंगे तो क्या है, रुद्र प्रतिधान लोग से सने हुए ऐसे भोग मिलेगा, ऐसा राज्य मिलेगा, मैं नहीं चाहता। तो ऐसे इनकार कर देता है, उस पर भगवान मुस्कुराए। तुम वाचे ऋषि के सब प्रसन्न व्यवहार से मजीब ऋषि से मिले मचा, दूसरे अध्याय का दसवां श्लोक होता है। भगवान मुस्कुरा करके बोले, तो मुस्कुराए क्यों, हंसे क्यों, थोड़ा सा हंसना है, मुस्कुराना मैंने जोर से हंसना नहीं, थोड़ा मुर्ख करके बोले। तो हंसी क्यों आ गई, इससे पहले सातवें श्लोक में अर्जुन शरण हो जाते हैं और मैं आपके शरणों मेरे को शिक्षा दीजिए ऐसा कह करके, और अगर कहते हैं युद्ध नहीं करूंगा। नौवें श्लोक में सातवें शरण होकर आठवें अपनी स्थिति बताई, नौवें में कहते हैं नोविंद बबूगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे चुप हो गए। इस पर भगवान हंसे, क्या बचपन की बात कर रहा है, अभी तो कहता है कि आप शिक्षा दीजिए क्या करूं, और मेरे बोलने से पहले ही निर्णय कर देता है युद्ध नहीं करूंगा, कैसे बोलता है। इस पर हंसे भगवान, फिर भगवान ने उपदेश आरम्भ किया। उपदेश आरंभ किया जिसमें बहुत से टीकाकार और व्याख्यानदाता कहते हैं आत्मनात्मा का विवेचन किया इसमें पहले, जो कि बहुत गहरा विषय है और बाद में करना चाहिए था, वो आरंभ से ही किया है, ग्यारहवें श्लोक से तीसवें श्लोक, बीस श्लोकों में। परंतु इसमें एक विलक्षण बात है, आत्म अनात्मा का नाम नहीं, ईश्वर जीव का नाम नहीं, ब्रह्म प्रकृति माया का नाम नहीं, इनका नाम ही नहीं है। तो क्या है, शरीर और शरीरी, सत और असत, नित्य और अनित्य, इन दो का विवेक विवेचन किया। शरीर एक शरीर ही शरीर धारण करने वाला और शरीर, इन दो का विवेचन किया। इसमें आत्मनात्मा का विवेचन हो जाता है, परंतु आत्मनाथ माया प्रकृति ब्रह्म जीव आदि के नाम ही नहीं आया है 20 श्लोकों में। इसके बाद युद्ध की कर्तव्यता बताइए। तात्पर्य सत अस्त का विवेचन किया। अब जो सत है वो है जीवन और असत है वो है मृत्यु। आज इसमें लेके जीवन के विषय में, वो जो जीवन सत है नित्य है जो सदा ही रहता रहे कभी भी मरे नहीं अमर हो जाए, उस तत्व का विवेचन भगवान ने आरंभ से किया। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता, असत भावा न विद्यते, असत का सत्ता नहीं हो सकती, असत का भाव नहीं हो सकता, और ना भावो विद्यते सत, सत का अभाव नहीं हो सकता। सत सत ही है, असत असत ही है। उस सत्य को सर्वथा प्राप्त कर रहने की बात गीता ने कही। अब उस सत्य को प्राप्त करने के लिए भगवान ने पहला सांख्यों की दृष्टि से कहा, और वो कह करके पीछे कहा ऐसा ते वैसा सांख्य सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व नैवम पाप मापसी। ये पाप की एक परिस्थिति आ गई। अर्जुन कहता है कि महाराज हस्तेन आत्साई न हस्वा आसमान पाप में वास्तवे, हमारे को पाप लगेगा। और भगवान कहता अस्तम धर्म संग्राम न करी शशि तथा स्वधर्म कीर्तन से हित्वा पाप वापसी। युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं युद्ध करने से पाप लगेगा, तो फिर पाप से बचने का उपाय क्या है? तो 38वां श्लोक है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय तथो युद्धा युद्धस्व नैवम पाप मोक्षसि। यह विशेष ध्यान देने की भाई बहनों के लिए है। हृदय में जो राग द्वेष होते हैं, अच्छा और मंदा होता है, ठीक और बेठीक होता है, अनुकूल और प्रतिकूल होता है, इनमें जो हमारे विकार हो जाते हैं, राजीव नाराज होते हैं, ये है मूल कारण जन्म मरण का। ध्यान दें आप, अनुकूलता में खुश हो जाते हैं, प्रतिकूलता में नाराज हो जाते हैं, ये राजीव और नाराज होते हैं, ये जन्म मरण का कारण है। इनको समान समझो, सुख दुख के समय कृष्णा लाभा लाभ जया जय, जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ करके युद्ध करो, फिर पाप नहीं लगेगा। जिसके हरक शोक नहीं होते, राजी नाराजी नहीं होता, प्रत्येक परिस्थिति में सब रहता है तो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहाँ सज्जनों वो प्राप्ति समता की प्राप्ति सबको होती है। जिस तरह से डोला होता है ऐसे झूला, वो झूलता है तो इधर जाता है उधर जाता है, ऐसे समता सबको प्राप्त होती है। हर एक काम करते हुए परंतु उसको पकड़ नहीं पाते, राग द्वेष हर्ष और शोक ठीक और बेठीक में ही उलझ जाते हैं, इसे जन्म मरण होता है। वो समता अगर कायम रहे तो बेड़ा पार है। गीता में समता का खास वर्णन है। तो ये व्यवहार में परमार्थ की स्थिति कैसे होगी, आपके सामने अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति आती रहेगी। ये संसार का स्वरूप है, अनुकूलता और प्रतिकूलता आना है, मन चाहिए होना है मन चाहिए न होना है, ये जो चीज है ये संसार का स्वरूप है। संसार में हर्ष और शोक राग और द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक और बेठीक ये संसार से ये होता ही रहेगा। तो ये होता रहता अपने को समझ, जैसे दिन से रात, रात से दिन से रात से दिन होता है, परंतु हम ना तो दिन में खुश होवे ना रात में नाराज होवे, हम समर हैं। ऐसे सुख दुख में लाभ हानि में जय पराजय में अनुकूलता प्रतिकूलता में सुख दुख की परिस्थिति या उस परिस्थिति में सम रहे तो मुक्ति हो जाएगी। तो ये कला है खास, हरेक काम करते हुए ये कला सीखना है। खास क्षमता का वर्णन है गीता में। वो क्षमता की प्राप्ति कैसे होती है तो भगवान कहते हैं सांख्य के विषय में कह दी, योग के विषय में मेरे सुनो। तो कर्मयोग और ज्ञान योग ये दो योग बताए। ज्ञान योग सत असत का विवेचन करके सत में अपनी स्थिति जो स्वतः है ध्यान दें, आप और हम सदा सत में स्थित रहते हैं। अनेक दुनियों में जन्म होने पर भी हम कायम रहते हैं, नित्य निरंतर रहते हैं, यह है सत। और जो शरीर बदलते रहते हैं यह है असत। तो असत मिटता रहता है, पदार होता रहता है, प्रवाह और सत्ता हमारी सामान्य रूप से रहती है। उस सत्ता में सोच हो जाए, उस चौदहवें अध्याय में सब दुख सुखा स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए। तो स्वयं स्थिति सबकी होती है, अपने में आपकी स्थिति स्वतः ही स्वाभाविक है। उसमें स्थित रहे, ये अनुकूलता प्रतिकूलता का झोंका आता है, इस झटके में बरोबर रहे क्षमता से तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। आप कोई काम करो, किसी आश्रम में हो, किसी वर्ण में हो, किसी देश में हो, किसी वेश में हो, कुछ भी कार्य करते हो, केवल समता में रहना है। उस समता से तत्व की प्राप्ति हो जाती है। गीता ने पांचवें अध्याय में कहा है, यह सर्गो ये शान साम्य स्थित माना। उन लोगों ने इस जीवित वास्तव में ही संसार को जीत लिया। ये शाम मन साम्य अवस्थित, जिन लोगों का मन साम्यावस्था में स्थित होगा समता में, तो जीवन समता है, मरण विषमता है। ये खास बात थोड़े शब्दों में, हर दम उस समता में रहे तो निर्दोष अंगे समम ब्रह्म, तो सम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है केवल समता रहने से। अब वो कर्मयोग से भी समता होती है, ज्ञान योग से समता होती है, भक्ति योग से समता होती है, तीन विशेष बताए हैं, और लय योग, हठ योग, राजयोग, मंत्र योग, अनाशक्ति योग, कई तरह के योग है। तब तो उस योग का तात्पर्य समता है। यह परिभाषा की है गीता ने, समत्वम योग उच्चते, समता को योग कहते। उस समता में स्थित रहे, हर शोक में नहीं बहे, ना राजयोग ऐसे रहे। कैसे रहेंगे? जिस तरह से हम लोगों के यहाँ पर रात और दिन दो होते हैं, परंतु सूर्य में रात और दिन दो नहीं होते। अपनी दृष्टि से कहें दिन ही दिन रहता, रात होती ही नहीं, परंतु दिन नाम रात की अपेक्षा है, वहाँ केवल आनंद प्रकाश ही प्रकाश है, जो चीज नहीं है वो समता है। तो हर शोक राजी दाराजी न रह करके हर दम समता में बने रहे, जो आप रहते हो। मैं थोड़ी बात बताता हूँ समझने के लिए, गीता के श्लोकों को कहने से थोड़ा विषय जटिल हो जाता है, सार बताता हूँ। आप जितने भाई बहन बैठे हैं, आपके सामने सुखदायी परिस्थिति भी आती है, दुखदायी परिस्थिति भी आती है। आप एक रहते हैं, सुख में भी आप रहते हैं, दुख में भी आप रहते हैं। तो सुख और दुख, दुख और सुख, ये तो बदलते हैं, आप बदलते नहीं हैं। जब सुख में सुखी, दुख में दुखी हो जाते हैं, तो ये आपका स्वरूप नहीं है। आप तो सुख दुख दोनों को जानने वाले हैं, सुख दुख आने और जाने वाले हैं। आप रहने वाले हो, वो रहने के स्वरूप में अब रह जाओ, मैं मुक्ति है बस। आपसे ज्ञान योग को नहीं जानते, ध्यान योग को नहीं जानते, भक्ति योग को नहीं जानते, कर्म योग को नहीं जानते, लय योग को नहीं जानते, हठ योग को नहीं जानते, अनाशक्ति योग को नहीं जानते, कोई परवाह नहीं। केवल आपके भीतर हर्ष और शोक न हो, राग द्वेष न हो, ये है जीवन। नित्य निरंतर रहने वाला तत्व, क्योंकि आप ऐसे रहते हो, किसी ध्वनि में जाओ, किसी देश में जाओ, किसी परिस्थिति में जाओ, आप वैसे के वैसे रहते हैं, परंतु आप उसमें रहते हुए उसमें नहीं रहते हैं, आने वाले अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में आप बदल जाते हैं, राजी और नाराज हो जाते हैं। ये है आगंतुक दोष। सुखी होना भी आगंतुक दोष है, दुखी होना भी आगंतुक दोष है। भगवान ने इन दोनों को व्यथा कहा, यंग हीना व्यथील किए थे। ये जो माता सुख दुख होता है, इनमें जो व्यथा नहीं पहुंचाते, राजी हो गए तो आप व्यसित हो गए, नाराज हो गए तो व्यसित हो गए। आप हैं, आप रहते हैं, उस जगह ही आप कायम रहे, हर एक कार्य करते हुए ये आने जाने वालों के साथ मिल करके और न फंसे अपने स्वरूप रहे। ये खास बात है। वो ज्ञान योग से ऐसा होता है, भक्ति योग से भी ऐसा होता है, कर्म योग से भी ऐसा होता है। योग नाम समता का है, गीता की खुद की परिभाषा योग मानो समता का। दो जगह परिभाषा की है गीता में, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम और समत्वम योग उच्चते। दुखों के संयोग का ही वियोग है, उसका नाम समता है, और समता का नाम समता है, उसका नाम योग है। इस योग में स्थित रहे आप, गीता का आरंभ से अंत तक आप अध्ययन करें, जितनी महिमा इस योग की है उतनी किसी की बात महिमा नहीं है। सार तत्व निष्कर्ष निचोड़ बताता हूं। उस समता में आप रहते हो, पर रहते हुए भी उसमें कायम नहीं रहते हो। सुख दुख होने पर सुख दुख ही आ जाते हो, अनुकूलता प्रतिकूलता उन पर राजी नाराज हो जाते हो। ये जन्म मन का खास कारण है। इसके बिना आपका जीवन समता में स्वतः सिद्ध है। ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से सब चीजें सिद्ध होता है। इस जीवन का वर्णन गीता ने किया, बड़े विचित्र ढंग से किया है, छोटे से ग्रंथ में किया है, और छोटे ग्रंथ में वर्णन करते हुए भी विस्तार पूर्वक कहा है। ज्ञान योग की बातें भी बहुत विस्तार से कही, कर्म योग की बातें भी बहुत विस्तार से, तीसरा चौथा दो अध्याय विशेषता से कहा, और सब अध्यायों में कर्म योग का वर्णन आता है। ऐसे ज्ञान योग का वर्णन 13 और 14 अध्याय में कहा, परंतु और अध्याय में बहुत आशा है। ऐसे ध्यान योग का वर्णन 6 अध्याय में किया, 8 में किया, पर और अध्याय में आता है योग का वर्णन किया है। परंतु सब में सार चीज निष्कर्ष निचोड़ उसका है समता, मन राग द्वेष नहीं, हरक शोक नहीं, राजी नाराजी नहीं है, जैसे अपने बड़े रहे। ये बदलने वाले आप बदलने वाले नहीं हो। अनेक परिस्थितियों आई है, अनेक अवस्थाएं, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था आई है, शरीर है, प्रलय है, महासर्ग है, महाप्रलय हुआ है, तो आप रहे हो। ये बिल्कुल आपका हमारा अनुभव है। एक और एक अनुभव की बात बता दूं, आप ध्यान देकर सुने। जागृत अवस्था में आप रहते हैं, स्वप्न अवस्था में आप रहते हैं। जागृत और स्वप्न में रहने वाले आप सुषुप्ति में भी रहते हैं। सुषुप्ति कहते हैं गाढ़ नींद को, जिसमें ना स्वप्न आता है ना जागृत रहते हैं, गहरी गहरी नींद आ जाती है। फिर जाग करके आप कहते हैं, ऐसे सुख से सोए हमें कुछ भी पता नहीं था। उस समय एक बात का अनुभव होता है, आप कृपा करके मेरी बात को ध्यान से सुने और लक्ष्य में लाएं। अवस्थाएं बदली है, पर आप बदले नहीं हो। कल परसों था वो ही आज मैं हूं, बीच में जागृत आई, स्वप्न हुआ, सुषुप्ति हुई, फिर जाग गए, तो अपने आप का अनुभव बाल्यावस्था से लेकर मैं अभी तक मैं वही हूँ, ये आपके नित्य निरंतर रहने का आपको अनुभव है। आपको इस बात का बरोबर ज्ञान है, इसमें संदेह नहीं है। बस इस समता में आप स्थित रहे, गीता पूरी आपके आश्रम आ जाएगी। सार चीज है, सार। मैं ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, इसका तो पता था ना। जैसे कोई बाहर से आवाज दे कि अमुक आदमी यहाँ है, तो हम कहते यहाँ नहीं है। तो वो अमुक आदमी नहीं है, पर बोलने वाला भी नहीं है क्या? अगर नहीं है तो कौन कहता है नहीं है? ऐसे आप कहते तो मेरे कुछ भी पता नहीं था। तो पता नहीं होने का पता आपको था उस समय में, आप मौजूद थे। पहले जागृत अवस्था में थे, स्वप्न अवस्था में थे, सुषुप्ति अवस्था में थे, अब पीछे जागृत अवस्था में आ गए। आपकी सत्ता नित्य निरंतर रहने वाली है, ये है खास गीता का ज्ञान, जो सबका अनुभव है। मैं वही हूँ जो बाल्यावस्था में था। इसको शास्त्रीय परिभाषा से प्रतिभिज्ञा कहते हैं, तत्तेदंतावगाही ज्ञानम प्रत्यभिज्ञा। वो मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, ऐसा ज्ञान होता है। तो ऐसा निरंतर आपका ज्ञान, उसमें आप स्थित रहे, आने वाली अवस्थाओं में, आने वाली परिस्थितियों में, आने वाले देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना बदलने वाली में चिपके नहीं, आप निर्लेप रहे, ये खास विद्या है गीता जी की। थोड़े शब्दों में सार गीता का सार है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है, गीता का सार ये है। और उस साधनाओं में सार है शरणागति। आप ऐसा बने रहो, ये शक्ति हो तो ऐसे बने हो, रहो न शक्ति हो तो हे नाथ मैं आपके शरण हूं, ऐसे भगवान के शरण हो जाओ। क्षमता आ जाएगी, स्वतः आ जाएगी, स्वभाव। यह सुख दुख बदलने वाला है, परमात्मा और मैं एक है। परमात्मा का मैं हूँ, मेरे परमात्मा है। संसार का मैं नहीं, शरीर का मैं नहीं, शरीर संसार मेरा नहीं, इनका हमारा संबंध नहीं है, निरंतर बदल रहा है। एक बात और कह दूं, मैं गीता के निचोड़ कह रहा हूँ, तत्व कह रहा हूँ, सार बात कह रहा हूं। ये आपके हमारे बहम की बात है कि हम जी रहे हैं, और जी रहे हैं, परंतु जैसे कहते जी रहे वैसे नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं। क्या शरीर जी रहे हैं? क्या आप अपने में स्थित रहे, ये है जीवन, और आप शरीर में स्थित रहते, ये है मृत्यु। जन्मे उससे पहले ही अपना मरना शुरू हो गया था। गर्भवास में आए तब से 100 वर्ष की अवस्था ली जाए तो गर्भ में भी आप बदलते रहे, बदलते बदलते बच्चा बन गए, फिर जन्म गए, फिर बदलते 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 रहे। वो बदलना हर दिन आपका बना रहता है। आप सुनते हैं मैं कह रहा हूँ, परंतु जो बदलने की क्रिया है वो निरंतर हो रही है। आप ध्यान दें न दें, व्यापार करें, ध्यान करें, जप करें, कीर्तन करें, और जो संसारी काम करें, चाहे अन्याय करें, पाप करें, हिंसा करें, हत्या करें, तो भी वो बदलने की क्रिया जो आपका शरीर बदलता है वो निरंतर बदल रहा है। गंगा की प्रवाह की तरह हरदम बदल रहा है, और बदल रहा है बड़ी तेजी से। जो पहला है उसको छोड़ के दूसरा हो जाता है, तो पहला मर गया, दूसरा हो जाता है, जन्म है। ये परंपरा बढ़ती हरदम बनती रहती है, तो ये असत है। और आप इनको जानने वाले नित्य निरंतर रहते हो, वो अनिरंतर रहने वाले आप अपने में स्थित हो जाओ, ये गीता की असली तत्व की बात है। किसी योग से, किसी उपाय से, आप जो निरंतर रहते हो उसमें बने रहो। तो मैं तो वही हूँ, बालकपन में था वही जवानी में था और वही आज वृद्धावस्था में हूँ। जागृत में था, स्वप्न में था, सुषुप्ति में था, मूर्छा में था, समाधि में था, वो मैं ही हूँ। ये अवस्थाएं बदली, मैं नहीं बदला। तो आप तो नहीं बदलते हो और आपके सिवाय सब अवस्था, परिस्थिति, घटना, क्रिया, पदार्थ, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया सब बदलती रहती है, आप रहते हो। तो ये आप जी रहे हो, शरीर से मानते हो, शरीर जी नहीं रहा, शरीर मर रहा है। जितने वर्षों में आप हो गए उतने वर्ष आप मर गए। क्षमा करना, बुरा मत मानना, मैं ना श्राप देता हूँ, ना आपके साथ द्वेष है, ना खराब बात कहता हूँ। जन्मा जो बालक 80 वर्ष का होने वाला है, अगर वो 5 वर्ष का हो गया तो 80 वर्ष बाकी है। कहते हैं कि 5 वर्ष जी गया, सच्ची बात है 5 वर्ष मर गया, 80 वर्ष पूरा होते ही मर जाएगा। तो मरना निरंतर हो रहा है, जीना है ये केवल शरीर की तरफ देख करके आप बिना विवेक कहते हैं कि जी रहे हैं। विवेक से अगर कहा जाए तो निरंतर शरीर मर रहा है, मौत की जा रहा है। आप सोते हैं तो मौत की जा रहे हैं, बैठे हैं तो मौत की तरफ जा रहे हैं, काम करते हैं तो मौत की जा रहे हैं, आप की कुछ नहीं करते हैं तो मौत की तरफ जा रहे हैं, पाप करते हैं तो मौत की तरफ जा रहे हैं, पुण्य करते हैं तो मौत की तरफ जा रहे हैं। बड़ा तत्व विवेचन करते हैं, सुनते हैं, तत्व का विचार करते हैं, तो भी ये शरीर तो मौत की तरफ निरंतर जा रहा है। तो निरंतर संसार मात्र मर रहा है। फिर नहीं आसी, फिर नहीं घोड़ा, फिर नहीं नारी पुरुष का जोड़ा, सूर्य चंद्रमा पर्वत पहाड़ समुद्र नदियां सब नाश की तरफ जा रही। एक मार्मिक बात बताओ, जैसे आप दरवाजे पर खड़े हैं और आपके सामने कई मोटरें निकल गई, सामना निकल गया, कई रिक्शा निकल गए, कई पैदल निकल गए, आप सबको जानते हैं, पर वो जाने वाले नहीं जानते। एक आदमी 10-20 आदमी गए थोड़ी थोड़ी देर में, 5-5-7 मिनट के बाद एक आया फिर मंच पर। तो सबको जानने वाला है वो जाने वाला नहीं है। ऐसे तीनों अवस्थाओं को जानते, जागृत को जानते, स्वप्न को जानते, सुषुप्ति को जानते हैं, और क्लोरोफॉर्म सुना दिया जाए तो मूर्छा को जानते हैं, और समाधि लगे तो समाधि को जानते हैं। 5 अवस्था होती है, मूर्छा और समाधि 2 है। ये अवस्थाएं बदलती है, आप इनको जानने वाले हो तो आप बदलते नहीं हो, इसमें आप स्थित रहो। ये तात्विक बात है, बड़ा साधन है, क्योंकि 5ों के बदलने को जानने वाला स्वयं बदलने वाला नहीं है। अगर स्वयं बदलने वाला हो तो 5 अवस्था होती है बदल गई, ये कौन कहता है? जो नहीं बदलता वही कह सकता है, बदलने वाला नहीं कह सकता। तो वो आपका स्वरूप है, इस स्वरूप को जताना गीता का काम है। इस स्वरूप में स्थिति है, वो सम है, एक सवा। चाहे आज अभी मेरे कहने से ही इस बात को पकड़ ले कि मैं तो वही हूँ, बालकपन में था वही मैं हूँ, अवस्था बदल गई, शरीर बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, घटना बदल गई, क्रियाएं बदल गई, कई बदल गए, पर तो मैं तो वही हूँ, इसमें आप स्थित रहे। बदलने वाले के साथ में मिल करके बदलने में हाँ में हाँ न मिलावे, बस ये असली जीवन है। नित्य निरंतर रहने वाला आपका खास जीवन है। यही बात गीता ने बड़े जोर से बताई है, ज्ञान योग से, कर्म योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, हृदय योग, हठ योग, राजयोग आदि दूसरे योगों ने अनेक ग्रंथों में बताया है, इसी तत्व को बताया है। आप नित्य निरंतर मौजूद है, आप है तभी तो अनेक अवस्थाओं को जानते हैं, अनेक घटनाओं को जानते हैं, अनेक व्यक्तियों को जानते हैं, अनेक लोगों को जानते हैं, हमें अनेक देशों को जानते हैं। तो जानने वाला नहीं बदला, ये देश काल वस्तु व्यक्ति सब बदलने वाले हैं। तो बदलने को जानने वाले आप एक रहते हैं, वो अपने आप में स्थित रहे। सम दुख है सुख है स्वस्थ, सुख आया ये भी जाएगा, दुख आया ये भी जाएगा। सुख दुख को समान कर ले, कि सुख दुख को समान कैसे करे, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। आप सुन भेद क्या हुआ, फिर से सुने आप ध्यान दे करके, सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, और दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। भेद क्या है बताइए, एक बार वो बुरा, एक बार वो बुरा, एक बार वो भला, एक बार वो भला, टोटल में बरोबर दोनों ही। अगर हिम्मत करें आप आज से ही सुख दुख में समान रहे, कि आगमा पाए नो अनिश्चया, आगमा पाए नो अनिश्चया। मैं तो ये बात भी कहता हूँ साधकों को, सुख आवे दुख आवे, आगवा पाए उन्होंने त्या, आगवा पाए उन्होंने त्या, आगवा पाए उन्होंने त्या, ऐसे जब सर्व करते मन से, आने जाने वाले अनिश्चय, आने जाने वाले अनिश्चय, आपके दुख में बिल्कुल मिटने के ये अनुभव करोगे। सुख में मिटे, दुख में मिटे, आने जाने वाले, इसमें क्या कीमती है, क्या बेकीमती है, क्या बड़ा है क्या छोटा है, कुछ नहीं। बड़े आप हो ये छोटे हैं, आप रहते हो ये बहते हैं, बहते को देखने वाला रहता हुआ होता है, रहने वाला ही बहने को देखता है। इस बात नित्य निरंतर ये बात हो रही, ये खास जीवन की बात है, गीता की खास सार बात है। अभी आप अनुभव कर रहे हैं, और शरीर और संसार जा रहा है, आप और हम आकर बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी क्या उतनी उम्र अब है? चालीस मिनट हुआ, 50 मिनट हुआ, कितने मिनट हो जाए चाहे, इतनी उम्र घटकी सबकी, छोटे से छोटे बालक से लेकर बूढ़े के बूढ़े तक इतनी उम्र कम हो गई है, मर रहे हैं, इतने नष्ट हो गए हैं, और अगर ही कितना इसका पता नहीं, पर इतने अवस्था इतनी बीत गई इसका बिल्कुल पता है, इतने तो मर गए। धनवत्ता मरती है, आपकी गरीबी मरती है, पंडिता ही मरती है, विद्यता मरती है, मूर्खता मरती है, विज्ञता मरती है, सब मरते हैं, सब जाने वाले, आप रहने वाले हैं। तो शरीर में आप रहने वाले हैं, और संसार में परमात्मा रहने वाले हैं। शरीर और संसार एक रूप है, आप और परमात्मा एक रूप है। सीधी सरल बात, रहने वाले आप और परमात्मा है, बहने बहने वाला संसार और शरीर है। एक जाति का है, आप एक जाति के हो, ये बहने वाली जाति के है, आप रहने वाली जाति के हो। अब बहने वाली जाति के साथ होकर अपने को बहना मान लेते हो, इसको बड़ा पाप बताया, हत्या बताई है इसको। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति स पश्यति। विषम संसार में समान रूप से परमात्मा है, ये बदलने वाले में रहने वाला परमात्मा है, विनाश होने वाले में अविनाशी परमात्मा है। समम पश्यन्ति सर्वत्र, समम अवस्थित में ईश्वरम, समान रूप से ईश्वर प्रति परिपूर्ण है, ऐसे समान अवस्था को जानता है, उसके लिए कहा है कि न हिनसि आत्मना आत्मानम्। समरूप से देखने वाला अपनी हत्या नहीं करता है, और जो समरूप न देख करके शरीर के साथ में हाँ में हाँ मिलाकर जन्म मरने वाला बदलने वाला अपने को मानता है वो आत्मघाती है, आत्महत्या करता है। नहीं तो समम पश्यन् सर्वत्र समम अवस्थितम् ईश्वरम् न हिनस्ति आत्मना आत्मानम्, अपने से अपने आप की हत्या नहीं करता, इस बात से परम गति को प्राप्त हो जाता है। कितनी सुगम, कितनी सरल, कोई परिश्रम नहीं, केवल विवेक की प्रधानता। सत असत नित्य अनित्य का जो विवेक है सरागत ठीक से विशेष प्रत्येक भावे उनको आप समझ रहे निहाल हो जाएंगे, एकदम ठीक ध्यान हो जाएंगे, ऐसी पक्की सच्ची सिद्धांत की एकदम अटल बात। ये गीता ने सिखाया है। अब क्रिया करने में चाहे आप धंधा करें, व्यापार करें, नौकरी करें, खेती करें, गायों को रखें, और चाहे राज करें, शासन करें, अफसर बने, चाहे दास बने, नौकर बने, छोटे बने, बड़े बने, रसोईया बने, चाहे लेबर बन जाए, चाहे जिस सृष्टि में चले जाए, ये ऊपर के बनने वाला है, आप बनने बिगड़ने वाले नहीं है, आप रहने वाले हैं। रहता रूप सही कर रखो, बहता संगन पहीजे, ये बहता है संसार से भी, रहने में आप रहो निरंतर। ये गीता का जीवन है, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग सबका सार है, इसमें पहुंचना है, यही पहुंचना है। और कुछ योग नहीं जाने, केवल सुन करके आप अनुभव करें कि भाई मैं सब अवस्थाओं में रहने वाला, संपूर्ण परिस्थितियों में रहने वाला, संपूर्ण बदलने वाले संसार में न बदलने वाला मैं हूं, ये मेरा स्वरूप है, बदलना ये संसार का स्वरूप है। सीधी सरल बात, एक गीता का नित्य योग है, परमात्मा के साथ नित्य योग। यह संयोग का वियोग होता है, योग का वियोग नहीं होता, योग निरंतर रहता है। संयोग वियोगांता, जितने संयोग है सबका वियोग होगा, परंतु आपका वियोग नहीं होगा, आप अपने साथ में नित्य निरंतर रहते हैं, परमात्मा के साथ रहते हैं। ये खास बात संपूर्ण साधनों का फल है, वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, स्मृतियों में, संतों की वाणी में, जगह जगह आप देख रहे हैं, अंत में इसी जगह आएंगे, तब तो यही मिलेगा। अगर वो थोड़ी सी बात में सुन करके मान लो गई बात है, ऐसी नित्य निरंतर रहने वाली अवस्था है, वो अवस्था नहीं है, अवस्था अतीत है, अवस्था बदलती है, तब तो बदलता नहीं है, जो बदलता नहीं है उसको जीवन कैसे, नित्य निरंतर जीते रहो, कभी मरोगे नहीं, मरने की बात होगी नहीं, नित्य निरंतर जीवन, ये गीता का जीवन है, गीता का तत्व है। बड़ी सरल रीति से आप मान लें, और विवेक प्रधानता है, इस बात को जान ले, कैसे जान ले कि नाश होने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, नाश को देखने वाला अविनाशी हो सकता है, नाश को देखने वाला नाशवान नहीं हो सकता, उसका नाश हो जाए कि विनाशी और रहने वाला कौन जानेगा, अविनाशी नाश को जानता है, बदलने में को बदलने वाला नहीं जानता, न बदलने वाला जानता है, आने जाने वाले को रहने वाला जानता है, आने जाने वाला नहीं जानता। ऐसे आप सब संसार को जानते हैं कि सब बदलने वाला आने जाने वाला है, तो आप आने जाने वाले नहीं हो, जन्म मरने वाले को जानते हो, आप जन्म मरने वाले नहीं हो, आप एक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले हो। ये खास गीता की बात है, आज इस बात से मान अभी मान रहे, इस बात को स्वीकार कर रहे, बड़ा पार है। अपोहन के द्वार होते हैं, एक विस्मृति होता है, एक ऊहापोह होता है। शंका समाधान अपोहन शब्द का अर्थ है दो, तो शंका समाधान उसमें ही है और अपोहन विस्मृति भी मेरे से ही है। ये त्रिवर सात्विक अभाव, इससे क्यों जाओ यहाँ आओ ना, ये त्रिवर सात्विक अभाव, ये राजसा और तामसा से मत मेरे से होते हैं। बताओ एक अपोहन पे आप अटक गए, ये त्रिवर सात्विक अभाव, ये थे राजसा और तामसा से मत विधि तान विधि न तुम तेसु ते मई, मैं वे मेरे नहीं, मैं उनमें नहीं हूँ, पर मत एव मेरे से ही होते हैं। राजसी तामसी सात्वी सब तात्पर्य कि मूल मैं हूँ सबका, पर वो सात्वी मैं नहीं हूँ, मेरे में सात्वी राज तामस भाव नहीं है, मैं गुणातीत हूँ, न तू हम तेसु न ते मई। इस बात एक अपोहन नहीं है, सब सत्ता हमारे गुण, सत असत मैं हूँ। अभी कह रहे ना सतो विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत्ता और वहां के सत सत्ता हम अर्जुन, और अर्जुन कहते हैं सत असत तत्पर यथ, और भगवान कहते हैं न सत्य न असत उच्चते, न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है, सत असत मैं हूं। ये उस तत्व के बताने की रीति है, उसका लक्ष्य कराने की रीति है, उपाय है, समझाने का एक तरीका है।
कहते हैं गीता के भाव में वो स्थिर हो जाए और जन्म मृत्यु के इस चक्र में पड़े ही नहीं,
बिल्कुल नहीं,
तो ठीक है अनिष्ट तो नहीं होगा,
बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा अनिष्ट, बिल्कुल पक्की बात एकदम ठोस। आप उसमें निश्चित रहे हैं
महाराज जी, प्रत्येक साधक जो है अपने शरीर में साक्षी का बोध करने के अंदर,
साक्षी बोध नहीं होता, सीखना होता है, मैंने जाना, मैंने पढ़ाई की है,
और मैं सर्व हूँ, एक देह में तो मालूम पड़ता है लेकिन मैं सर्व हूँ ये नहीं मालूम पड़ता,
एक को मालूम नहीं पड़ता छोड़ दो, ये जितने छोड़ो, ये पढ़ाई मैंने की है और पढ़ाई में पढ़ा सकता हूँ, ये फायदा नहीं है, ये है। आप अगर सुगमता से उसको जानना चाहते हैं तो एक नहीं है एक है, दो चीज है, नहीं तो मत मानो और है को मानो, निहाल हो जाओगे, पसरे में पढ़ो ही मत दूसरे में।
ये
प्रश्न दूसरे है ना,
इस साधना अवस्था में एक तो कुछ चल रहा है, एक कुछ कर रहा है, एक कोई
एक मंत्र उच्चारण कर रहा है अंदर ही अंदर, और एक उसको देख रहा है, और एक तो गलत उसको बोल रहा है, ये क्या कर रहा है,
तीसरा क्या बताया,
एक कोई उसको देख रहा है
और तीसरा,
और एक कोई ध्यान मंत्र बोल रहा है,
दो
एक कुछ चल रहा है, अब ये अर्थता से
नहीं सर, तो वही रहा है, तीसरी बात कैसे हुई, मैं बात कहता हूँ टक्का सीख, एक है एक नहीं है, नहीं को छोड़ कर है में से सो जाओ, निहाल हो जाओगे, क्यों पत्र पढ़ो, सीधी सारी बात है। अगर इसका मनन करना चाहो तो देखो, एक तो सागर संजीवनी टीका लिखी है मैंने गीता के ऊपर, दूसरा नित्य योग है, और अभी अभी कुछ 10-15 दिन में प्रकाश हुई है तत्व ज्ञान कैसे हो उसका आप मनन करो, वासुदेव सर्वम 5-6 पुस्तक है उनको आप मनन करो, एक ले लो तत्व ज्ञान कैसे हो, एक को ले लो और मनन करो। अभी तो मैं थोड़े दिन ठहरता हूँ, या कल शाम को जाना है, तो आप पुस्तक को देखो, मनन करो और मेरे से मिलो, शंका हो तो पूछो, समझ में आ जाए, ठीक।
महाराज जी अगर सुबह कोई भी ना
पहले जैसे आप मतलब उसी स्वप्न में ही आप गीता का पाठ कर रहा हो तो या सब खुले मतलब मुंह नहीं धोया उधर नहीं गए और बाकी की क्रियाएं दातन कर रहे हैं तो भी वो गीता पाठ चल रहा हो तो इसमें कोई हानि
कोई हानि
कोई हानि नहीं। गीता का पाठ चलता है बहुत ठीक चलता रहे। असली जिज्ञासा नहीं है बाबा, असली जिज्ञासा हो तो मैंने है नहीं कहा इसमें मस्त हो जाए आदमी। असली जिज्ञासा होती है तो एक नहीं एक है इसमें मस्त हो जाएगा कहने से। अभी तमाशा कर रहे हो खेल रहे हो खेल किसी में लग नहीं है अग्नि नहीं लगी जानने के लिए अग्नि लग जाए पट हो जाएगा।